ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा ने एक प्रश्न पूछा है बच्चों से। जो बच्चे समझते हैं कि हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, जिस समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ हम भी उसी समय जन्मे हैं, उनके साथ में हमने रास की है, तो उनके साथ ही हैं हम, तो टोटल पूरे 84 जन्म लिए। वो हाथ उठाओ, वो सब भी उठा रहे हैं। संशय है क्या? संशय तभी हाथ नहीं उठाते। हाँ, जो समझते हैं हमने पूरे 84 जन्म लिए, हाथ उठाओ भाई। श्री कृष्ण तो अकेला तो नहीं जन्म लिया होगा ना, उनके साथ और भी तो होंगे जिन्होंने जन्म लिया होगा। तो आज बाबा ने उसकी निशानियां बताई है। जो समझते हैं हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, शुरू से लेकर हमने इस ड्रामा के अंदर पार्ट बजाया है श्री कृष्ण के साथ, उनकी निशानियां क्या होगी? पहली निशानी तो बहुत बड़ी निशानी है कि वो कभी माया से हार नहीं खाएंगे। ये बहुत बड़ी निशानी है। अगर बीच बीच में अगर माया से हार खा लेते हैं तो कहेंगे तो नहीं ना कि पूरे 84 जन्म लिए। तो ये अपने आप को जांचना है अपने अपने अंदर कि कहीं माया से हार तो नहीं खा लेते हैं, माया हमें हरा तो नहीं देती है कोई भी कारण से। और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है या जो निशानी है वो है कि वो बाबा को एक्यूरेट याद करेंगे। एक्यूरेट याद किसको कहा जाता है? जो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूप में याद करते हैं। कई बार बाबा कहते हैं बाप रूप में याद किया तो बहुत अच्छा, चलो बाप भूल गया तो टीचर रूप में याद करो, टीचर भूल गया तो सदगुरु रूप में याद करो। लेकिन आज बाबा ने कहा जो तीनों रूप से याद करते हैं, केवल एक रूप से नहीं, क्योंकि बाप के रूप में याद करना माना पूरा वर्षा भी याद करना, बाप माना वर्षा। फिर दूसरा बाबा कहते टीचर रूप में याद करना माना पढ़ाई को भी कभी नहीं भूलना, और सतगुरु रूप में याद करना माना सदा ये याद रखना कि घर जाना है, बाबा के साथ घर जाना है। तो यहां से बेहद का वैराग्य। तो तीनों रूपों से अगर याद पक्की है तब कहेंगे कि हाँ सतयुग के आदि में श्री कृष्ण के साथ आए। अब ये लक्ष्य रखो, तीनों एक साथ याद रहे, पालना, पढ़ाई और फिर हाँ गति, सदगति। बाबा कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति, जो बाबा हमें अधिकार के रूप में दे रहे हैं। हम जाएंगे बाबा के साथ। तो आज की मुरली सारी इसी पर है। आज 12/11/2024 है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। तो सबसे पहला श्रृंगार कौन सा करते हैं? गुणों का श्रृंगार तो कहेंगे, लेकिन सबसे पहला श्रृंगार कौन सा करते हैं? हाँ, क्या कहेंगे? सबसे पहला श्रृंगार, सबसे अच्छा श्रृंगार और सबसे पहला श्रृंगार वो है पवित्रता का, क्योंकि बाबा ने आते ही सबसे पहले यही श्रीमद् दी, न बच्चे पवित्र बनो फिर का योगी बनो। तो पवित्रता होगी तभी तो योग भी लगेगा। तो पवित्रता का ये सबसे पहला श्रृंगार बाबा ने हमें किया। वायदा कराया ना यज्ञ में, शुरू शुरू में यही वायदा कराया, हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। तो ये पहला श्रृंगार बाबा हमें करते हैं। तो मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का, अच्छा भी है और पहला भी है। प्रश्न है, पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? बताया, उत्तर है, पहला, वो बाप के साथ साथ टीचर और सतगुरु तीनों को याद करेंगे। ऐसे नहीं कि बाप याद आए तो टीचर भूल जाए, जब तीनों को याद करे तब ही कृष्णपुरी में जा सकते हैं और श्री कृष्ण के साथ राज कर सकते हैं, अर्थात आदि से पाठ बजा सके। और दूसरा, उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकेंगे, विजयी होगा, सदा ही विजयी। आएंगे तूफान, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन उन तूफानों को पार कर लेगा, वो तूफान हरा नहीं सकेंगे। तो उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते हैं जो 84 जन्म पूरे लेने वाले हैं। ओम शांति। बाप पहले बच्चों को कहते हैं, ये भूल तो नहीं जाते हो, किसके आगे बैठे हैं हम? बाप के आगे, टीचर के आगे और सतगुरु के आगे बैठे हैं। बाबा नहीं समझते हैं, हाँ बाबा कहते, बाबा नहीं समझते हैं कि सब कोई इस याद में बैठे हैं। हाँ भाई, बैठे हो सब इसी याद में कि हम बाप, टीचर, सतगुरु के सामने बैठे हैं। फिर भी बाप का फर्ज है समझाना, बाबा समझते नहीं बैठे हैं, इसलिए समझाना फर्ज है। ये है अर्थ सहित याद करना बाबा को। हमारा बाबा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और बरोबर हमारा सतगुरु भी है, जो बच्चों को साथ में ले जाएंगे और हम उनके सामने बैठे हैं। हाँ, मुरली तो उनकी सुन रहे हैं। बाप आए ही हैं बच्चों का श्रृंगार करने, पवित्रता से श्रृंगार करते हैं। हाँ, करते आते हैं, हर मुरली में बाबा पवित्रता की बात जरूर करते हैं। तो पवित्रता से श्रृंगार करते आते हैं, धन भी अथाह देते हैं, ज्ञान धन कितना बाबा दे रहे हैं, धन देते ही हैं। ये ज्ञान रत्न जो धन है बाबा का सच्चा, ये देते ही हैं नई दुनिया के लिए जहां तुमको जाना है। ये रत्न फिर वो सच्चे रत्न बन जाएंगे भविष्य में। धन देते ही हैं नई दुनिया के लिए जहां तुमको जाना है। तो ये बच्चों को याद करना है। बच्चे गफलत करते हैं जो भूल जाते हैं, अभी भूलना नहीं, बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूप में याद करना, पालना, पढ़ाई और घर कि अभी जाना है। वो जो पूरी खुशी होनी चाहिए वो कम हो जाती है, ऐसा बाप तो कभी मिलता ही नहीं है, सारे कल्प में ऐसा बाप नहीं कोई मिलेगा। तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे जरूर हैं, वो हमको पढ़ाते हैं, ऐसा बाप तो कभी मिलता ही नहीं है। तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे जरूर हैं, वो हमको पढ़ाते हैं, इसलिए टीचर भी जरूर हैं। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया अमरपुरी के लिए। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, ये याद तो जरूर बच्चों को होना चाहिए, बाप, टीचर, सतगुरु याद रहे और ये भूले नहीं, याद रहे सदा। हम संगम पर बैठे हैं, पक्का पक्का याद करना है। ये भी जानते हो इस समय कंसपुरी आसुरी दुनिया में है। समझो कोई को साक्षात्कार होता है चलो वो साक्षात्कार हुआ कृष्णपुरी का, सतयुग का, बहुत खुशी हुई। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, समझो कोई को साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई कृष्णपुरी उनकी डायनेस्टी में जा नहीं सकते। ऐसे नहीं साक्षात्कार किया तो जरूर हम श्री कृष्ण की डायनेस्टी में जाएंगे, सबसे पहले उनके साथ ही होंगे। साक्षात्कार केवल करने से नहीं होगा, जा तब सकेंगे जब बाप टीचर गुरु तीनों को ही याद करते रहेंगे। ये आत्माओं से बात की जाती है, बाबा आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही कहती है हाँ बाबा, हाँ बाबा, बाबा आप तो सच कहते हो। आत्मा बाबा को कहती हाँ बाबा आप तो सच कहते हो, आप बाप भी हो पढ़ाने वाले टीचर भी हो। सुप्रीम आत्मा पढ़ाती है, सुप्रीम सोल ना, सुप्रीम आत्मा पढ़ाती है। लौकिक पढ़ाई भी तो आत्मा ही शरीर के साथ पढ़ाती है, जो लौकिक टीचर होगा वो भी आत्मा ही शरीर के साथ पढ़ाती है, परंतु वो आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। कलयुगी दुनिया में जो भी कोई लौकिक टीचर भी है वो कोई पावन थोड़ी है, आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित। दुनिया के मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि हम नर्कवासी हैं। किसको कहो तो कहे तुम क्या मुझे गाली देते हो, नर्कवासी है, लेकिन है सब नर्कवासी। अभी तुम समझते हो हम तो अब चले अपने वतन, ये तुम्हारा वतन नहीं है। कलयुग की दुनिया तुम्हारा वतन नहीं है, ये है रावण का पराया वतन। तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है, यहाँ के लोग ऐसे नहीं समझते हैं कि हम पराए राज्य में हैं। भारतवासी तो यही कहेंगे हम अपने वतन में बैठे हैं, लेकिन ये रावण का वतन बन गया है। बाबा कहते ये नहीं समझते हैं कि हम पराए राज्य में हैं। आगे तो मुसलमानों के राज्य में बैठे थे, फिर क्रिश्चियंस के राज्य में बैठे, जब मुगलों का राज्य था तो कहेंगे उनके राज्य में बैठे, फिर क्रिश्चियंस आए उनके राज्य में, भारत था तो कहेंगे क्रिश्चियंस के राज्य में बैठे हैं। अभी तुम जानते हो हम अपने राज्य में जाते हैं। चलो क्रिश्चियन चले गए, मुगल चले गए, लेकिन फिर भी कहेंगे तो सही ना रावण के राज्य में बैठे हैं। पर तुम जानते हो अब हम अपने राज्य में जाते हैं। आगे रावण राज्य को हम अपना राज्य समझ बैठे थे, ये भूल गए हैं कि हम पहले राम राज्य में थे। महात्मा गांधी जी ने इच्छा कि राम राज्य, उसका मतलब राम राज्य नहीं है, और दूसरा मतलब है कि जरूर कभी था, तब तो फिर से इच्छा होती है राम राज्य में, राम राज्य हो। तो ये भूल गए हैं कि हम पहले राम राज्य में थे, फिर 84 जन्मों के चक्र में आने से रावण राज्य दुख में आकर पड़े हैं। पराए राज्य में तो दुखी होता है, अब कोई दूसरे देश में जाके रहे उसको तो हमेशा डर ही रहता है, पता नहीं हमको निकालना दे इस देश से, पता नहीं आजकल तो सब कुछ अस्थिर हो रहा है ना, तो हमको इस देश से निकालना दे, क्योंकि उसका उनका असली देश तो नहीं है, वो पराए देश में रह पड़े हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं कि पराए राज्य में तो दुखी होता है, ये सारा ज्ञान अंदर में आना चाहिए। बाप तो जरूर याद आएगा, परंतु तीनों को याद करना है, बाप टीचर सतगुरु। ये नॉलेज भी मनुष्य ही ले सकते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना, अब जानवरों को थोड़ी ये सिखाएंगे बाप टीचर सतगुरु तुम्हारा परमात्मा है। ये भी तुम बच्चे समझते हो वहाँ सतयुग में कोई बैरिस्ट्री आदि की पढ़ाई होती नहीं, कोई वकालत नहीं पढ़ता है वहाँ सतयुग में। बाप यहाँ ही तुमको माला माल कर रहे हैं, सब तो राजाएं नहीं बनते हैं, व्यापार भी चलेगा वहाँ, सब कुछ होगा, राजाएं तो थोड़े होंगे ना, बाकी तो सारी प्रजा में तो व्यापारी भी होंगे, सब प्रकार के होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, वो तो जरूर यहाँ डॉक्टर्स और वकील नहीं होंगे, बाकी बिजनेसमैन होंगे और इंजीनियर्स होंगे, तो व्यापार भी चलता होगा, परंतु वहां तुमको अथाह धन रहता है, घाटा आदि होने का कायदा ही नहीं। या तो बिजनेस में कितना घाटा पड़ जाता है, सत्ययुग में कभी घाटा नहीं पड़ेगा व्यापार में। लूट मार आदि तो वहां होती नहीं, या तो लूट के भी ले जाते हैं, वहां तो ऐसे कभी नहीं होगा। नाम ही है स्वर्ग। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है कि हम स्वर्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। बाप कहानी भी उनकी बताते, लक्ष्मी नारायण की कहानी न सत्यनारायण की कहानी। 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया हरा देगी, हार खा लेंगे माया से अगर 84 जन्म नहीं लिए तो। ये भी बाप समझाते रहते हैं कि माया का कितना बड़ा तूफान है, तूफान लाती है माया मन बुद्धि में। बहुतों को माया हराने की कोशिश करती है। आगे चल तो बहुत देखेंगे और सुनेंगे कैसे माया ने हरा दिया उनको। अब इतनी महारथी नंबर 1 में बाबा उनकी महिमा गाते थे और माया ने उसको हरा दिया। तो आगे तो चल तो बहुत देखेंगे सुनेंगे। बाप के पास सबके चित्र होते तो तुमको वंदर दिखाते, ये फलाना इतना दिन आया बाप का बना, फिर माया खा गई मर गया, माया के साथ जा मिला। हाँ, बाबा मर गया ऐसे कहते जैसे कि कोई वो छोटी चीज है, पर माया के साथ जाके मिला तो मर गया ना बाबा की दुनिया से। यहाँ इस समय कोई शरीर छोड़ते हैं तो इसी दुनिया में आकर जन्म लेते हैं। तुम शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के साथ बेहद घर में जाएंगे, वहां बाबा मम्मा बच्चे सब है ना। हाँ, सब है। परिवार ऐसा ही होता है, मूल वतन में बाप और भाई भाई है। लौकिक में तो माँ बाप बच्चे सब होते हैं, पर जब बाबा कहते हैं परिवार में ऐसा होता है, पर मूल वतन में भी बाप और बच्चे हैं। हाँ, भाई बहन ऐसे वो सब नहीं, आत्मा ही है और परमात्मा है मूल वतन में। मूल वतन में बाप और भाई भाई हैं और कोई संबंध नहीं, सत्ययुग में तो सब संबंध होंगे। यहाँ बाप और भाई बहन है, संगम पर बाप और भाई बहन है। फिर वृद्धि को पाते हैं, सत्ययुग में माँ बाप भाई बहन होंगे, मामा चाचा। बाबा कहते मामा होगा, मामा होगा कि नहीं होगा। हाँ, मामा होगा पर चाचा नहीं होगा, बुआ होगी मौसी नहीं होगी। हाँ, क्योंकि एक ही बेटा है एक ही बेटी है ना, ये भी है संबंध थोड़े होंगे, यहाँ तो कितने संबंध है। तो बाबा कहते हैं और जब संगम पर आओ तो संबंध कितना छोटा हो जाता है, बस माँ बाप और भाई बहन। फिर परम धाम जाओ तो माँ और बहन भी गई, बस बाप और बेटे, बस बाप और बच्चे बस। तो इसलिए धीरे धीरे संबंध कम होते गए और सत्ययुग में आए, फिर थोड़े संबंध धीरे धीरे तो और बढ़ते जाते हैं संबंध। तो बाबा कहते हैं चाचा मामा आदि बहुत संबंध हो जाते हैं। इस संगम पर तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो भाई बहन हो, शिव बाबा को याद करते हो तो भाई भाई हो। सुना, तो प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो भाई बहन हो, और शिव बाबा को याद करते हो आत्मा रूप में तो भाई भाई हो। ये सब बातें अच्छी रीति याद करनी है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चों का फर्ज है। हाँ, बच्चों का फर्ज है, बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना। समझाते रहते हैं, बाप बच्चों को इतना प्यार देते हैं, मेहनत करते हैं उन पर, तो बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना। तब तो नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों बच्चों को नमस्ते नमस्ते करते हैं, क्योंकि सिर के ताज हो। तब तो नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं, अर्थ भी समझाते हैं कि क्यों बाबा नमस्ते करते हैं। भक्ति करने वाले साधु संत आदि कोई तुमको जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बताते। कल भी बाबा ने कहा ना परसों कि बाबा बच्चों को आगे रखते हैं, आज आगे करते हैं। कैसे? बाप की पूजा तो एक ही रूप में होती है और बच्चों की पूजा तो दो रूप में होती है, निराकारी साकारी दोनों। और शिव बाबा तो केवल निराकार है, उनकी पूजा तो एक ही रूप में होती है। तो कौन बड़े हो गए? जिनकी पूजा दो रूप में होती है, और तीन रूप को तो भी ठीक है शक्तियों के रूप में। तो तीन रूप में बच्चों की पूजा होती है और बाप की पूजा एक ही रूप में, तो कौन बड़े हुए? जिनकी पूजा तीन रूप में होती है। तो बाबा कहते हैं तब तो नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं, अर्थ भी समझाते हैं। भक्ति करने वाले साधु संत आदि कोई तुमको जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बताते। वो तो मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते रहते हैं, वो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। वो राजयोग भी कैसे सिखलाएंगे, क्योंकि राजयोग है ही प्रवृत्ति मार्ग के लिए, राजाई के लिए। राजयोग है ही प्रवृत्ति मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को चार भुजाएं देते हैं, उनको भी चार भुजाएं देते हैं, तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना ब्रह्मा का भी। यहाँ बाप ने इनको एडॉप्ट किया तो नाम रखा है ब्रह्मा और सरस्वती, अलौकिक मात पिता। ड्रामा में नूंद देखो कैसी है, पर है तो वास्तव में बाप और बच्ची ना, युगल तो नहीं है ना मामा बाबा। तो बाबा कहते ये ब्रह्मा सरस्वती अलौकिक नाम रखा है। ड्रामा में नूंद देखो कैसी है, वान परस्त अवस्था में ही मनुष्य गुरु करते हैं 60 वर्ष के बाद। इसमें भी हाँ ब्रह्मा बाबा में भी 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया, तो बाप टीचर गुरु बन गए। अभी तो कायदे भी बिगड़ गए हैं कि 60 वर्ष के बाद ही गुरु किया जाता। अभी कौन से कायदे बिगड़ गए हैं, छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। पता नहीं अगर बच्चा है बच्चे रूप में मर जाए तो कम से कम गुरु तो किया हुआ होगा तो सदगति होगी, तो बच्चे रूप में उसको गुरु करा देते हैं। ये तो है ही निराकार, ये सतगुरु तो निराकार है। तुम्हारी आत्मा का ये बाप भी बनते टीचर सतगुरु भी बनते हैं। निराकारी दुनिया को कहा जाता है, क्या नाम देंगे? निराकारी दुनिया को कहा जाता है आत्माओं की दुनिया। ऐसे तो नहीं कहेंगे दुनिया ही नहीं है, वो भी तो दुनिया है ना, निराकारी आत्मा ही वहां रहती है। शांति धाम कहा जाता है, वहां आत्माएं रहती है। अगर कहीं परमात्मा का नाम रूप देश काल नहीं है, हाँ बाबा ने कितना बड़ा लॉजिक दिया है। अगर कोई कहते हैं कि परमात्मा का तो न नाम है न रूप है न देश है न काल है, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? भगवान के हम बच्चे हैं हम कहते हैं, तो जिस भगवान का न नाम है न रूप है न देश है न काल है, कुछ भी नहीं है, तो फिर उसके बच्चे थोड़ी होंगे, कुछ भी नहीं होगा, तो फिर बच्चे फिर कहाँ से आएंगे? तुम बच्चे अब समझते हो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री माना इतिहास और ज्योग्राफी माना भूगोल। तो इतिहास होता है चेतन का, चैतन्य में जो, और भूगोल है जो जड़ है प्रकृति, मौसम ये वो सब प्रकृति की का खेल, वो उसको कहेंगे ज्योग्राफी। तो बाबा ने अब इस पर विस्तार किया है। हिस्ट्री चैतन्य की होती है, ज्योग्राफी तो जड़ वस्तु की है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम कहाँ तक राज्य करते हैं। अब ये हिस्ट्री है, अब कैसे कहाँ से राज्य शुरू किया, कहाँ तक राज्य किया, कहाँ तक राज्य चलता है, कौन कौन आए उस राज्य में, ये सब इतिहास है। हम कहाँ तक राज्य करते हैं, हिस्ट्री गाई जाती है जिसको कहानी कहा जाता है। इतिहास कहानी के रूप में, ये आए फिर ये आए फिर ये आए राज्य किया। और ज्योग्राफी तो देश की होती है, मौसम की होती है, वातावरण की होती है, वो सबको ज्योग्राफी कहेंगे, पेड़ पहाड़ या जो कुछ भी। तो ज्योग्राफी देश की होती है। चैतन्य ने राज्य किया जड़ तो राज्य नहीं करेंगे ना, जड़ तो सेवक है, चैतन्य ने राज्य किया। जड़ तो राज्य नहीं करेंगे, जितने समय से फलाने का, कितने समय से फलाने का राज्य था, क्रिश्चियंस ने भारत पर कब से कब तक राज्य किया, ये सब इतिहास में आता है। तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई जानते ही नहीं है। चलो हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते भी हैं तो केवल आधा कल्प की जानते हैं, द्वापर युग से। द्वापर से पहले क्या था सत्ययुग त्रेता की, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी किसको पता ही नहीं है और ना कोई पढ़ाई भी जाती है। तो बाबा कहते हैं, तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई जानते ही नहीं। कहते हैं सत्ययुग को तो लाखों वर्ष हो गया, अब जानेंगे भी कैसे, लाखों वर्ष कह दिया तो कैसे जानेंगे उस सत्ययुग की हिस्ट्री ज्योग्राफी। उसमें कौन राज्य करके गए, कितना समय राज्य किया, ये कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता हिस्ट्री, कौन राज्य करके गए और कितना समय राज्य किया, ये इतिहास में आता है। आत्मा चैतन्य, शरीर जड़ है, सारा खेल ही जड़ और चेतन का है। अब इस पर बहुत कुछ हो सकता है, जड़ और चेतन है ही दो का खेल, जड़ और चेतन, पुरुष और प्रकृति, आत्मा और शरीर, है ना। तो ये जड़ और चेतन का ही खेल है, जड़ बिना चेतन भी क्या करेगा और चेतन बिना जड़ भी क्या करेगा, किस काम का। पेड़ अपने लिए तो नहीं फल, खुद को तो नहीं फल खिलाता है, नदी अपने लिए तो नहीं बहती है, वो चेतन के लिए ही बहती है, फल चेतन के ही लिए है। तो बाबा कहते हैं ये खेल ही है जड़ और चेतन का। मनुष्य जीवन ही उत्तम गाया जाता है, पर जड़ चेतन के खेल में बाबा क्या सुनाते हैं कि जब जब चेतन का जड़ पर पूरा साम्राज्य है, राज्य है, अधिकार है, तो सत्ययुग है। पर जब जड़ का चेतन पर राज्य हो जाता है तो फिर तो नरक है। ड्राइवर का पूरा कंट्रोल है गाड़ी पर, तो गाड़ी चलाना तो उसको खेल लगता है, परंतु अगर ब्रेक ही फेल हो गई तो गाड़ी उसको चलाएगी तो फिर तो क्या नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं ये खेल है ही जड़ और चेतन का। मनुष्य जीवन ही उत्तम गाया जाता है, आदमशुमारी भी मनुष्यों की गिनती गिनी जाती है। अब जानवर कितने हैं, पक्षी कितने हैं, कीट कितने हैं, ये कितने, वह कहाँ तक बैठ के गिनती करेंगे। तो आदमशुमारी पॉपुलेशन जो जनसंख्या गिनती करते हैं वो भी मनुष्यों की ही गिनी जाती है। जानवरों की तो कोई गिनती कर भी नहीं सके, उनके लिए कोई वीजा की भी जरूरत नहीं है, वो कैसे वो एक देश से दूसरे देश में भी चले जाएंगे पैदल ही पैदल, कौन उनको रोकेगा। तो कोई गिनती कर भी नहीं सके, सारा खेल तुम्हारे पर है। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुम सुनते हो, तो बाप इसमें आकर तुमको सब बातें समझाते हैं। इसको कहा जाता है सब बातों को समझाते हैं, उसको क्या कहेंगे, बेहद की हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ये नॉलेज न होने कारण तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। मनुष्य होकर दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को न जाने तो वह मनुष्य ही क्या काम का, मनुष्य क्या काम का, अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी वो नहीं जानता है कुछ भी। अभी बाप द्वारा तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुन रहे हो, ये पढ़ाई कितनी अच्छी है। कौन पढ़ाते हैं, बाप। बाप ही ऊंचते ऊंच पद दिलाने वाला है इन लक्ष्मी नारायण का, और जो उनके साथ स्वर्ग में रहते हैं उनका ऊंचते ऊंच पद है ना। वहाँ बैरिस्ट्री आदि तो करते नहीं है, वकालत नहीं है वहाँ, वहाँ तो सिर्फ सीखना है, कलाएं सीखते हैं बच्चों को, पेंटिंग ड्राइंग आदि आदि, हाँ उस रूप से ही सिखाएंगे। तो वहाँ तो सिर्फ सीखना है, हुनर न सीखे तो मकान आदि कैसे बने, ये भी तो सिखाते होंगे ना, इंजीनियरिंग भी तो सिखाते होंगे जरूर। तो हुनर न सीखे तो मकान आदि कैसे बने। एक दो को हुनर सिखलाते हैं, होता है ना, किस बाप पिता में अगर कोई हुनर है, कोई कला है, कोई स्किल है तो बच्चे को सिखाएगा, फिर बच्चा औरों को सिखाएगा, तो ऐसे ही हुनर चले आए। कई तो नहीं सिखाया किसी को तो उसके जाने के बाद तो वो हुनर वही खत्म हो गया, क्योंकि किसको सिखाया ही नहीं। तो बाबा कहते हैं एक दो को हुनर सिखलाते हैं ना, नहीं तो इतने मकान आदि कौन बनाएंगे, आपके ही तो नहीं बन जाएंगे। ये सब राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता रहता है। इतना समय हम राज्य करते थे, फिर रावण के राज्य में आते हैं। दुनिया को इन बातों का पता ही नहीं है। क्या पता नहीं है कि हम रावण राज्य में हैं। कहते हैं हमको बाबा रावण के राज्य से लिबरेट करो, ऐसे तो कहते हैं, भगवान इस दुनिया से हमें छुड़ाओ, मोक्ष दो, मुक्ति दो, ये तो कहते हैं। लेकिन ये रावण का राज्य है और राम राज्य था कभी? हाँ बाबा कहते हैं ये जानते नहीं भारत, हम रावण राज्य में, ये पता ही नहीं। कहते हमको बाबा रावण के राज्य से लिबरेट करो, भारतवासियों ने क्रिश्चियन राज्य से अपने को लिबरेट किया, अंग्रेजों से अपने आप को मुक्त कराया। अब फिर कहते हैं गॉड फादर हमको लिबरेट करो, अंग्रेजों से तो मुक्त हो गया भारत, स्वतंत्रता मिली, लेकिन बाबा कहते हैं विकारों में तो फंसे हुए, वो तो परतंत्र है रावण के राज्य में, तो इसलिए गॉड फादर को कहते हमें लिबरेट करो। स्मृति आती है ना, कोई भी ये नहीं जानते कि ऐसे क्यों कहते हैं हमको लिबरेट करो, मुक्त करो, ये क्यों कहते हैं नहीं जानते। अभी तुमने समझाया है कि सारी सृष्टि पर ही रावण का राज्य है, सब कहते हैं राम राज्य चाहिए, तो लिबरेट कौन करेगा? राम राज्य चाहिए पर रावण राज्य में है तो रावण राज्य से कौन लिबरेट करेगा? समझते हैं गॉड फादर लिबरेट कर गाइड बन ले जाएंगे। भारतवासियों को इतना अकल नहीं है, समझते भी है लेकिन बाबा कहते अकल नहीं है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल तमो प्रधान है वो, न इतना वो तो न इतना दुख देखते हैं न सुख। सत्युग में जो विदेश के लोग हैं न बहुत ज्यादा दुख देखते हैं न बहुत ज्यादा सुख, सत्युग का सुख तो वहां होता ही नहीं है ना, लेकिन भारतवासी सुख भी बहुत ज्यादा और दुख भी बहुत ज्यादा। तो बाबा कहते हैं वो तो न इतना दुख उठाते हैं न इतना सुख को पाते हैं, पर भारतवासी सबसे सुखी भी बनते हैं तो फिर दुखी भी बने हैं। हिसाब है ना, अभी कितना दुख है। जो रिलीजियस माइंडेड है, धार्मिक लोग है, धर्म में विश्वास रखते हैं, रिलीजियस माइंडेड है, वो याद करते हैं ओ गॉड फादर लिबरेटर, तुम्हारी भी दिल में है ना कि बाबा आकर हमारे दुख हरो और सुख धाम ले चलो। हाँ, बाबा को बच्चे भी कहते हैं, वो कहते हैं शांति धाम ले चलो, और तुम क्या कहते हो? केवल शांति धाम ले चलो नहीं, साथ में सुखधाम भी ले चलो। तो वो तो कहते शांति धाम ले चलो, तुम कहेंगे शांति धाम और सुख धाम ले चलो। अब बाप आया हुआ है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में कमरस कितना है, कथाएं सुनना, कहानियां सुनना, किस्से कई सुनना, ये तो सब कमरस है ना, उसमें रियल बात तो कुछ भी है नहीं। एकदम आटे में नमक है। चंडिका देवी का भी मेला लगता है, अब देखो बाबा ने चंडिका को याद किया, चंडिका देवी भी उसका भी पूजन होता है। चंडीगढ़ जो है ना वो चंडिका देवी के नाम से ही है, वहाँ चंडिका की का मंदिर होगा जरूर, तो चंडीगढ़ चंडिका देवी। और बाबा चंडिका किसको कहते हैं? चंडिका देवी का भी मेला लगता है। अब चंडियों का फिर मेला क्यों लगता है? सिंधी भाषा में तो ना कोई बहुत खराब है, बहुत बुरी है, बहुत दुख देती है, बहुत गालियां, मतलब बहुत कुछ, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो उसको कहते तू चंडी है, तू चंडी है, माना तुम्हारा बहुत बुरा कैरेक्टर है। तो चंडी किसको कहा जाता है, फिर बाबा चंडी के साथ चंडाल का भी भेद करते हैं। तो चंडी किसको कहा जाता है, बाबा ने बताया है चंडाल का जन्म भी यहाँ के ही लेते हैं, यहाँ के ही लेते हैं। तो कौन लेगा, जो ब्राह्मणों में ही होगा ना कोई, जो चंडाल भी बनेगा सतयुग में, चंडाल का जन्म भी यहाँ के ही लेते हैं, यहाँ रहकर अब कौन बनेंगे जाकर चंडाल। चंडाल माना बाबा कहते ना जो शमशान घाट संभालेंगे उनको चंडाल कहेंगे। तो कौन बनेंगे, यहाँ के, यहाँ रहकर खा पीकर कुछ देकर फिर कहते हैं हमने जो दिया है वो हमको वापस करो, हमने जितना दिया है धन हमको वापस करो, हम अभी नहीं रह सकते, अब वापस करो, इतना खाया पिया तो अब वापस करो, देखो तो कितना बोझ उनके ऊपर चढ़ता है, वापस लेंगे, मानो लेंगे भी तो कितना बोझ उठाएंगे, और खाया पिया उसका तो कुछ हिसाब ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं यहाँ रहकर खा पीकर कुछ देकर फिर कहते हमने जो दिया है वो हमको दो, हम नहीं मानते, संशय पड़ जाता है तो वो क्या जाकर बनेंगे। ऐसी चंडी का भी मेला लगता है, आखिर वो ब्राह्मण तो बने थे ना, बाबा को याद तो करते थे ना पहले, तो ऐसी चंडी का भी मेला लगता है, फिर भी सतयुगी तो बनते हैं ना, आएंगे जरूर सतयुग में, कुछ समय भी मददगार बने तो स्वर्ग में आ गए। वो भक्त लोग तो जानते नहीं, ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, वो चित्रों वाली गीता है कितना पैसा कमाते हैं। कल्याण मैगजीन एक निकलती है जिसमें श्री कृष्ण ने कैसे सुदर्शन चक्र चलाया, कितनों को मारा, क्या किया, बहुत कुछ है उस कल्याण मैगजीन, पता नहीं आजकल निकलती है नहीं निकलती, लेकिन उसकी एक कॉपी है हमारी लाइब्रेरी में, वो उसमें सारे चित्र ही चित्र है कि कैसे श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र से मारा है। तो बाबा कहते हैं ये चित्रों वाली गीता है कितना पैसा कमाते हैं, आजकल चित्रों पर तो सब आशिक होते हैं, और देवी देवताओं के भी कैसे चित्र बनाते हैं, मॉडर्न आर्ट, तो लोग आकर्षित होते हैं, आजकल चित्रों पर तो सब आशिक होते हैं, इसको आर्ट समझते हैं। मनुष्यों को क्या पता कि देवताओं के चित्र कैसे होते हैं, आजकल जैसे बनाते वैसे तो नहीं होंगे ना, सचमुच देवी देवताओं में कितना शिष्टाचार होगा, उनकी ड्रेस कितनी रॉयल होगी, वो तो लक्ष्मी नारायण का चित्र जो बाबा ने बनवाया उससे हम पता कर सकते हैं। आजकल जो मॉडर्न आर्ट में देवताओं के या देवियों के चित्र बनाते कितना बुरा लगता है। तो मनुष्यों को क्या पता कि देवताओं के चित्र कैसे होते हैं, तुम असल में कितने फर्स्ट क्लास थे फिर क्या बन गए हो, वहां कोई अंधा काना आदि होता नहीं, अंधे काने होते नहीं, चश्मा भी किसी को नहीं होता, ये चश्मा लगाना भी एक थोड़ा खंडित है ना, आंखें खंडित है तब तो चश्मा लगाना पड़ता है, या कान थोड़ा बहरा है तो लगाना पड़ता है, नकली दांत है तो ये भी तो सब खंडित हो गया ना शरीर, पर देवताएं तो बिल्कुल अखंड मूर्ति, अखंड मूर्ति की पूजा होती है, अगर खंडित हो गई मूर्ति बनाने में उसकी पूजा नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं वहां कोई अंधा काना आदि होता नहीं, देवताओं की नेचुरल शोभा होती है। हाँ, जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे याद आया जब शहजादियां आती थी और रास करती थी तो सब उनके साथ रास करते थे, तो किसी बहन को चश्मा होता था ना तो कहती थी ये क्या है क्या है, देवताओं को पता ही नहीं कि चश्मा भी कुछ होता है तो वो निकाल देती थी, क्या है, फेंक देती थी, ये क्यों पहना है, क्योंकि उनको तो अजीब लगता था, सतयुग में कोई चश्मा नहीं पहनता, और आजकल तो देखो छोटे छोटे बच्चे भी चश्मे पहन रहे। तो बाबा कहते हैं देवताओं की तो नेचुरल शोभा होती है, वहां नेचुरल ब्यूटी होती है। तो बाप भी सब समझाकर फिर कहते हैं, बच्चे बाप को याद करो, बाप बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है, तीनों रूप में याद करो। वही पहली पॉइंट, तीनों रूप में याद करो तो तीनों वर्षे मिलेंगे, तीनों का वर्षा मिलेगा। पिछाड़ी वाले तीनों रूप में याद कर नहीं सकेंगे, फिर मुक्ति में चले जाएंगे। तो बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन में जो कुछ देखते हो ये तो सब है साक्षात्कार की बातें, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी तो यहाँ की है। इनको आयु का, इनकी आयु का किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर कोई को भी समझा सकते हो। तो पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, हाँ, सबसे पहले बाप का परिचय देना है। वो बेहद का बाप है सुप्रीम। लौकिक बाप को परमात्मा व सुप्रीम आत्मा कभी नहीं कहा जाता है। सुप्रीम तो एक ही है जिसको भगवान कहा जाता है, वो नॉलेजफुल है। तो तुमको नॉलेज सिखलाते हैं, ये ईश्वरीय नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम। ये ज्ञान जो बाबा देते हैं ये रत्न है, ये सच्ची कमाई है, इसको कहेंगे सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज भी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ होती है। कितने प्रकार की नॉलेज होती है, गलत काम करने के लिए भी तो कोई को ज्ञान देते होंगे ना। तो नॉलेज भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होती है ना। बाप है ऊंचते ऊंच, तो पढ़ाई भी तो ऊंचते ऊंच है, मर्तबा भी ऊंचते ऊंच है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो झट जान जाते हैं, बाकी याद की यात्रा में युद्ध चलती है। इसमें तुम हारते हो, अगर याद की यात्रा में हारे तो बाबा कहते इसमें तुम हारते हो तो नॉलेज में भी तुम हारते हो, क्योंकि ज्ञान भी बुद्धि से उड़ गया। बाबा की याद ही नहीं ठहरती, माना ज्ञान थोड़ी बुद्धि में होगा, ज्ञान बुद्धि में है तो याद भी ठहरेगी। तो नॉलेज में भी तुम हारते हो, हार कर फिर भागंती हो जाते हैं, तो फिर नॉलेज भी भागंती हो जाती है। भागंती हो गए बाबा के ज्ञान से, तो फिर ज्ञान भी तो भागंती हो जाएगा ना, थोड़ी बुद्धि में रहेगा, वो किसी को थोड़ी समझा सकेंगे भागंती हो गया तो। बाप के आगे फिर नॉलेज में भी भागंती हो जाते हैं, फिर जैसे थे वैसे बन जाते हैं, और ही उनसे ही बदतर। केवल चलो वैसे जैसे थे वैसे ही बन जाए तो भी कहेंगे भाई चलो बच गया, फिर भी चलो दुनिया में गया, लेकिन उसे बदतर बन गए तो बिचार तो उसकी क्या हालत होगी। बाबा फिर भी उनको बिचारे कहेंगे। बाप के आगे चलन से, बाप के आगे चलन से दे अभिमान झट प्रसिद्ध हो जाता है। ब्राह्मणों की माला भी है, परंतु कईयों को पता नहीं है कि हम कैसे नंबर वार यहाँ बैठे। दे अभिमान है ना, निश्चय वाले को जरूर अपार खुशी होगी। किसको निश्चय है कि हम ये शरीर छोड़कर प्रिंस बनूंगा, अब ये प्रश्न है। हाँ, जिसको निश्चय है कि हम ये शरीर छोड़कर प्रिंस बनूंगा, सत्युग का राजकुमार बनूंगा, हाथ उठाओ। अच्छा, ब्रह्मा बाबा को तो बहुत निश्चय था, जब बाबा मुरली चलाते थे ना, वहां श्री कृष्ण का ये ट्रांसलाइट है, तो बाबा उस ट्रांसलाइट को देखकर कहते श्री कृष्ण के, मैं ये बनूंगा, मिष्णु बनूंगा, मिष्णु बनूंगा। जैसे छोटा बच्चा कैसे करता है ना, वैसे बाबा करते थे, गद्दी पर बैठ करके, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा। आप लोगों को ऐसे नशा चढ़ता है? हाँ, ब्रह्मा बाबा को ऐसे नशा चढ़ता था श्री कृष्ण को देखकर। तो बाबा कहते हैं, किसको निश्चय है कि ये हम ये शरीर छोड़कर प्रिंस बनूंगा, तो सबने हाथ उठाया। बच्चों को इतनी खुशी रहती है, तुम सब में तो पूरे दैवी गुण होने चाहिए, जबकि निश्चय है तो दैवी गुण भी चाहिए। हाँ, बनेंगे तो दैवी गुण नहीं होंगे तो कहाँ बनेंगे। निश्चय बुद्धि माना विजयी माला में पिरोवंती, निश्चय बुद्धि माना विजय माला में पिरोवंती माना शहजादी बनंती। शहजादी कौन बनेंगे जो माला में पिरोएंगे, और माला में कौन पिरोएंगे जो निश्चय बुद्धि होंगे। संडे की मुरली में ना पूरा निश्चय पर ही सारी मुरली थी। एक दिन जरूर आएगा, अब बाबा ने किसको याद किया, साकार बाबा के समय विदेशी नहीं थे पर बाबा विदेशियों को सदा याद करता था। एक दिन आएगा जो फॉरेनर्स सबसे जास्ती आबू में आएंगे, बाबा के घर में आएंगे, तो सबसे जास्ती फॉरेनर्स आबू में आएंगे और सब तीर्थ आदि छोड़ देंगे। कई विदेशी भारत में आते ना, कई संतों के पास जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो बाबा के बच्चे बनने होते हैं ना, वो कई बार ऐसे है जो आबू माउंट आबू में आए और यहाँ भी भटक रहे थे और कैसे यहाँ इस रोड पर चले और ये सफेद बिल्डिंग्स देखी और अंदर आ गए, और अंदर आ गए उनको लगा कि अरे मैं तो पहले भी यहाँ आया हूँ। और जैसे यहाँ आते हैं और बाबा के बच्चे बन जाते हैं, एकदम बन जाते हैं, तो उनका भटकना बंद हो जाता, नहीं तो भारत में भटकते रहते हैं अनेक आश्रमों में। तो बाबा कहते हैं तो यहाँ जब आबू में आएंगे, सबसे जास्ती फॉरेनर्स आबू में आएंगे और सब तीर्थ यात्रा आदि छोड़ देंगे और जगह जाना, वो चाहते हैं भारत का राजयोग सीखें। कौन है जिसने पैराडाइज स्थापन किया, तो पुरुषार्थ किया जाता है, कल्प पहले ये हुआ होगा तो जरूर म्यूजियम बन जाएगा। अब उस समय बाबा को ये संकल्प था कि माउंट आबू में ऐसे परमानेंट म्यूजियम बने, लेकिन कहाँ ढूंढे, कौन सी जमीन ले, कहाँ से माउंट आबू में परमानेंट म्यूजियम बन सकता है। तो 1965 में जब यहाँ एग्जीबिशन लगवाई थी, क्योंकि रमेश भाई ने एग्जीबिशन बनवाई थी और बॉम्बे में दिखाया था, एग्जीबिशन हमारी थी तो बहुत लोग आए थे, तो बाबा को इनवाइट किया कि बाबा आप मुंबई आ जाओ और देखो कैसी सेवा हो रही है एग्जीबिशन के द्वारा। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाबा तो नहीं आएंगे, वो पूरी एग्जीबिशन यहाँ लेकर आओ, यहाँ लेकर आओ तो बाबा देखेंगे। तो जहाँ अपना म्यूजियम है अभी, उसके सामने खाली जमीन थी, वो खाली थी, तो वहां पर एग्जीबिशन लगवाई और बाबा ने वो एग्जीबिशन देखी। तो बाबा को बहुत अच्छा लगा, तो बाबा ने कहा यहाँ ढूंढो, और उनके सामने ही जो अभी म्यूजियम है वो होटल था, तो कहा इनको ढूंढो, होटल का मालिक कौन है और क्या ये जमीन हमें मिल सकती है। तो उस समय ये म्यूजियम की कहानी है, कैसे बाबा की टचिंग से वो जमीन हमें मिली, वो होटल मिला, फिर उसको म्यूजियम बनाया, पर बाबा अव्यक्त हो गए। और उसी दिन जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी को, उसी दिन शाम को रमेश भाई ने वो पेपर सब साइन करवाए मालिक से और वो जमीन हमें मिली। और रमेश भाई ने रात की ट्रेन ली और सुबह पहुंचे 19 तारीख सुबह, और नीचे स्टेशन पर पता चल गया कि ब्रह्मा बाबा ने शरीर त्याग किया है, लेकिन बाबा की ये इच्छा थी वो पूरी हुई उसी समय। तो देखो बाबा कहते हैं तो पुरुषार्थ किया जाता है, कल्प पहले ये हुआ होगा तो जरूर म्यूजियम बन जाएगा, मधुबन में भी माउंट आबू में म्यूजियम बन जाएगा। समझाना है ऐसी प्रदर्शनी हमेशा के लिए लगाना चाहते हैं, परमानेंट होगा तभी तो हमेशा के लिए लगा सकेंगे ना, नहीं तो खाली एग्जीबिशन लगाई और फिर उठा दिया तो परमानेंट तो नहीं हुआ। 4-5 वर्ष के लिए लीज पर भी मकान लेकर लगा सकते हैं। हम भारत की ही सेवा करते हैं सुख धाम बनाने के लिए, ये कह करके वो जमीन लीज पर ले सकते हैं या मकान लीज पर ले सकते हैं। इसमें बहुतों का कल्याण होगा अगर म्यूजियम होगा तो। अभी तो देखो सब बेहद हो गया, रिट्रीट सेंटर जहां जाओ, जिससे को वो कहते हमको जमीन मिली है, गवर्नमेंट से जमीन मिली है, हम ये रिट्रीट सेंटर बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो देखो अभी तो बाबा की बेहद की सेवा इतनी जोर शोर से चल रही है। इसमें बहुतों का कल्याण होगा, अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, वो हमें अथाह धन देते हैं, हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। दूसरा, विजय बाला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धि बन दैवी गुण धारण करनी है, जो दिया उसे वापस लेने का संकल्प कभी न आए, संशय बुद्धि बन अपना पद नहीं गंवाना है। वरदान, क्रोधी आत्मा को, अब क्रोधी आत्मा के लिए क्या करो, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुण दान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा तो परवश है, ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो, ये आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आपने ऐसे संस्कार भरे हैं, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। स्लोगन, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। आज का अव्यक्त इशारा, आज 12 तारीख है। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़ाने वाले शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। इसके लिए स्मृति, वाणी और कर्म में श्रेष्ठता को धारण कर प्लेन बुद्धि बनो। कोई भी पुराने संस्कार का दाग न हो, तब प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे। पहले प्लेन बुद्धि हो, फिर बाबा कहते कोई भी पुराने संस्कार का दाग न हो, तब प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएगा, फिर सफलता एरोप्लेन माफिक उड़ेगी। सफलता एरोप्लेन माफिक उड़ेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अब तो नीचे बहुत सारे भाई बहने आ गए हैं, कर्नाटक, तो यहाँ तो लगता जैसे पूरा कर्नाटक आ गया है। जो भी कर्नाटक से नीचे से आए यहाँ तो उठाओ भाई, देखो सारा कर्नाटक। ओहो, ये सवेरे सवेरे आए होंगे नीचे से, बहुत अच्छा। कोई रात को भी आए हैं, बहुत अच्छा, वेलकम कर्नाटक वाले। तो अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे, फिर डबल विदेशी बैठे रहेंगे, आज का प्रोग्राम देंगे डबल विदेशियों को।